समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
आकाशवाणी गोल्ड पर एक नए दिन की एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है और रोज की तरह ये दिन भी लेकर आया है एक नई उम्मीद, एक नया सवेरा। आइए स्वागत करते हैं इस दिन का, इस उम्मीद के साथ कि रास्ता कितना भी कठिन हो लेकिन हमारे हौसले में कोई भी कमी नहीं होगी, क्योंकि मन की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है।
Namaskar, good morning Siddharth, and a very warm welcome to all the listeners tuned to Akashvani Gold on 100.1 MHz and the entire Akashvani network. Dear listeners, as the dawn breaks, as the world awakens, something special awaits you today. All you need to recognize it and make the most of it. We remember the words of Henry David Thoreau as we step into this wonderful day. Morning is when I am awake and there is dawn in me. Today we will bring you our forever exciting daily news magazine program Aaj Saveri, in which we will have the latest in national and international news, some metro city updates, and of course some historical trivia related to the 30th of March. So let's begin the show with the headlines.
जी हाँ, नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में भारत रत्न अलंकरण प्रदान करेंगी। इस वर्ष ये सम्मान पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और श्री पीवी नरसिम्हा राव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को मरणोपरांत दिया जा रहा है। पूर्व उप प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भी देश का सर्वोच्च नागरिक अलंकरण प्रदान किया जाएगा।
Today is the last date for the withdrawal of candidatures for the first phase of Lok Sabha elections, along with single-phase assembly polls in two northeastern states. The scrutiny of nominations was held on Thursday, while the filing of papers for this phase ended on Wednesday. In Bihar, filing of papers for the four parliamentary constituency segments of Gaya, Aurangabad, Nawada and Jamui in the first phase of parliamentary elections ended on Thursday. Scrutiny of nominations in the state will be held today. The last date of withdrawal of candidature is Tuesday. In the first phase, 102 Lok Sabha seats in the 17 states, including Bihar and four union territories, along with 32 assembly constituencies in Sikkim and 60-member house in Arunachal Pradesh, will go to polls on the 19th of the next month. Among states going to polls in a single phase for the Lok Sabha polls are Tamil Nadu, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Lakshadweep, Andaman and Nicobar Islands and Puducherry. The Election Commission of India, ECI, extended the last date for nomination in Bihar due to the festival of Holi and the Bihar Foundation Day.
निर्वाचन आयोग का सी विजिल ऐप मतदाताओं के बीच लोकप्रिय हो रहा है। अब तक आम चुनाव की घोषणा के बाद इस ऐप पर 79,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि 99% से अधिक शिकायतों का समाधान कर लिया गया है।
External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and his Ukrainian counterpart Dmytro Kuleba held discussions on the ongoing Russia-Ukraine conflict and its wider ramifications in a meeting in New Delhi yesterday. In a social media post, Dr. Jaishankar said he spoke on global and regional issues of mutual interest. He reiterated India's commitment to strengthen the overall relationship, including bilateral cooperation. Dr. Jaishankar said the Ukraine foreign minister's visit gives the opportunity to understand the situation in Ukraine. He said in recent months they have had interactions at various levels and some bilateral mechanisms have also met, which have created a momentum in the bilateral relations. The Ukrainian foreign minister arrived in India yesterday on a two-day visit.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यांत्रिक बुद्धिमत्ता यानी मशीन इंटेलिजेंस की सुविधा उपलब्ध कराने से पहले उसका उचित प्रशिक्षण देना जरूरी है, अन्यथा इसके दुरुपयोग की आशंका रहेगी। कल माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स के साथ चर्चा में उन्होंने कहा कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में कोई भी डीप फेक का इस्तेमाल कर सकता है। श्री मोदी ने कहा कि डीप फेक के उपयोग के संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश होने चाहिए और प्रामाणिक तथा डीप फेक से तैयार सामग्री के बीच अंतर स्पष्ट होना चाहिए। श्री बिल गेट्स ने भारत की तकनीकी प्रगति और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका की प्रशंसा की। चर्चा के दौरान श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने जीवन यापन को सरल बनाने के लिए तकनीक के उपयोग पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि डेटा सुरक्षा अब भी एक प्राथमिक विषय बना हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि डेटा स्तरीय और स्पष्ट होना चाहिए और डेटा के उपयोग के लिए व्यक्ति विशेष की सहमति अवश्य ली जानी चाहिए ताकि निजता का हनन न हो।
In Miami Open Tennis, India's Rohan Bopanna and his Australian partner Matthew Ebden will face second-seeded pair of America's Austin Krajicek and Ivan Dodig of Croatia in the men's doubles finals at Florida in the United States tonight. The top-seeded Indo-Australian duo stormed into the final after defeating the fourth-seeded pair of Marcel Granollers of Spain and Horacio Zabalos of Argentina 6-1, 6-4. This will be the 14th ATP Masters 1000 final for Bopanna, who has so far won 25 doubles titles. The victory in the tournament will also help the 44-year-old veteran to regain the world number one position in the ATP doubles rankings.
असम सरकार ने राज्य के चार जिलों में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून अफसपा को 1 अप्रैल से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। ये जिले हैं तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, चराई देव और शिवसागर। गृह विभाग ने एक अधिसूचना में कहा कि इन जिलों को कानून व्यवस्था की दृष्टि से अशांत क्षेत्र माना गया है और इसलिए अधिनियम की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के 70वें स्थापना दिवस समारोह में कहा कि कानून के समक्ष समानता आज के भारत की पहचान है। श्री धनखड़ ने कहा कि कानून उन लोगों की जवाबदेही तय कर रहा है जो स्वयं को कानून से ऊपर मानते हैं। उन्होंने भारतीय न्याय व्यवस्था को सशक्त, जनहितैषी और स्वतंत्र बनाया।
In IPL cricket, Kolkata Knight Riders registered a 7-wicket victory over the Royal Challengers Bengaluru in Bengaluru last night. Put into bat first, Bengaluru posted 182 runs for the loss of 6 wickets. In the stipulated 20 overs, with the help of Virat Kohli's 83 runs off 59 balls. In reply, Kolkata overhauled the target for the loss of 3 wickets in just 16.5 overs, riding on Venkatesh Iyer's 50 off 30. Today, the Lucknow Super Giants lock horns with Punjab Kings in Lucknow at 7:30 PM Indian Standard Time.
तो श्रोताओं, ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और कार्यक्रम आज सवेरे में अब वक्त हो चला है मेट्रो न्यूज का, और सबसे पहले चेन्नई की खबरें जानते हैं वैभव से।
Yes, Siddharth, starting the Metro News section, we go over to Chennai first, where an English skill development program called Crico English was launched by SIP Academy in collaboration with the UK-based RTL English. The program is designed to enhance the command over English and critical thinking skills among children. It uses a hybrid approach to technology with programs delivered by course instructors through the use of classroom animations, homework apps and books. Parts of southern districts of Tamil Nadu received summer rains on Friday. The regional Met Department predicted there would be isolated rainfall over Thuthukudi and Ramanathapuram. The showers brought a relief from the heat and humidity of summer. Ramanathapuram received 1 centimetre of rainfall. Dry conditions are likely to persist over other places. The Fisheries Department has started sinking 200 artificial reef structures at 10 locations between Ennore and Akkarai along the east coast. The structures measuring 6 feet in width will be sunk at identified locations 5 nautical miles from the shoreline, and the substratum will be sunk at a depth of 12 meters using ropes. Well, those were the updates from Chennai. Next, moving on. जी हाँ,
बिल्कुल नजर डालते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के समाचारों पर। त्योहार के मौसम में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे आज से भागलपुर और नई दिल्ली के बीच विशेष रेलगाड़ी चलाएगा। ये रेलगाड़ी भागलपुर से आज सुबह 11 बजे रवाना होगी और ये कल सुबह 7 बजे दिल्ली पहुंचेगी। और नई दिल्ली से भागलपुर के लिए यही रेलगाड़ी सुबह 4 बजे चलेगी। तो अब आपकी सुविधा के लिए ये रेलगाड़ी चलाई गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तर रेलवे ने चालू वित्त वर्ष में अपने पुराने सामान को बेचकर 603 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि अर्जित कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक शोभन चौधरी के अनुसार स्क्रैप की ये बिक्री देश की सभी क्षेत्रीय रेल इकाइयों में सर्वाधिक है। उत्तर रेलवे ने ये रिकॉर्ड सालाना बिक्री लक्ष्य 500 करोड़ से अधिक की बिक्री करके बनाया है। और अब नजर डालते हैं बेंगलुरु के समाचारों पर।
यह सिद्धार्थ, इन कर्नाटका द इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैव सीज्ड आर्टिकल्स वर्थ ओवर 62 करोड़ रुपीस टू इन्फोर्स द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एमसीसी। इट इंक्लूडेड 20.85 करोड़ रुपीस इन कैश एंड 27 करोड़ रुपीस वर्थ ऑफ ड्रग्स। द सीज्ड आर्टिकल्स इंक्लूड 70.86 लाख रुपीस वर्थ ऑफ गिफ्ट आर्टिकल्स, 8.63 लाख लीटर्स ऑफ लिकर वर्थ 27 करोड़ रुपीस, 15 kgs of gold worth 9 crore rupees, 59.04 kgs of silver worth 27 lakh rupees, and 21.17 carat diamond and jewelry worth 9 lakh rupees. The agencies have filed 969 FIRs against persons held during the seizure of articles. The election authorities received 8,703 public complaints through the C Vigil mobile app. These complaints were related to posters, banners without permission, property defacement, money distribution, distribution of liquor, gifts and coupons, campaigning beyond the permissible time, use of campaign vehicles without permission, religious or communal speeches, and also display of firearms and intimidation. The authorities have found 7,918 such complaints received through C-Vigil as correct, and action was initiated against the culprits. And now let's go to Mumbai, Siddharth.
जी हाँ, नजर डालते हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के समाचारों पर। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार मुंबई क्षेत्र में जिला नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी संजय यादव ने बताया कि 16 मार्च से 28 मार्च 2024 की अवधि के दौरान मतदाता पंजीकरण से संबंधित कुल 381 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें से 371 शिकायतों का समाधान किया गया है। श्री यादव ने कहा कि राष्ट्रीय शिकायत सेवा पोर्टल NGSP भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता पंजीकरण से संबंधित नागरिकों से प्राप्त शिकायतों की निगरानी और निवारण के लिए एक स्थायी वन विंडो योजना के रूप में बनाया गया एक पोर्टल है। इस पोर्टल पर नागरिक मतदाता पंजीकरण से संबंधित शिकायतें किसी भी समय दर्ज कराई जा सकती हैं। मुंबई के प्रतिष्ठित राजीव गांधी बांद्रा वर्ली सी लिंक पर टोल शुल्क 1 अप्रैल से लगभग 18% बढ़ जाएगा। महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम के अधिकारियों के अनुसार कारों और जीपों के लिए एक तरफ की यात्रा के लिए अगले महीने की शुरुआत से नई टोल दरें 100 रूपये होंगी, जबकि मिनी बस, टेम्पो और अन्य सामान वाहनों को इसके लिए 160 रूपये का भुगतान करना होगा। 8 लेन ओवरपास का उपयोग करने वाले मोटर चालक अब कारों और जीपों के लिए 85 रूपये, मिनी बस, टेम्पो, हल्के वाणिज्यिक वाहनों के लिए 130 रूपये और 2 एक्सल ट्रकों और बसों के लिए 175 रूपये का भुगतान करते हैं। ये दरें 1 अप्रैल 2021 से लागू हैं और अब इनमें बदलाव किया जा रहा है और ये शुल्क अब 18% तक बढ़ जाएगा। और अब नजर डालते हैं अगली मेट्रो की खबर पर।
Yes, we go over to Tech City Hyderabad, where the news is coming up related to the weather uncertainties these days, Siddharth. Early in the morning, the air has a little chill, which makes us wonder that where exactly our jackets are. And then when the day is getting ahead with time, the sun is burning down upon us with the scorching heat, and that kind of makes us a little confused, don't you think?
बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली में अभी भी हम देखें तो हालांकि मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है, दिन के समय अच्छी खासी गर्मी हो रही है, और धीरे धीरे लोगों ने अपनी जो एसी है उसकी सर्विसिंग और इस तरह के जितने भी कूलिंग इक्विपमेंट हैं उसको दोबारा से उसको तैयार कर लिया है इस गर्मी का स्वागत करने के लिए.
Absolutely, Siddharth, and a little warning, or let's say a little suggestion to all our dear listeners of Akashvani, to please take very good care of all yourselves and your family members. The changing weather, usually the anomalies of weather usually get a little
बिल्कुल
health dangers inside, so let's not be too callous about it, and let's take care of our health.
और सबसे बड़ी बात यह है कि जो चेंजिंग वेदर है इस समय, इसके साथ एक चीज और भी होती है कि क्योंकि इस समय काफी एलर्जी जिन लोगों को होती है तो उनको काफी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ऐसे में अगर हम अपना थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रखेंगे सुबह और शाम के वक्त तो निश्चित तौर पर हम स्वस्थ रह पाएंगे और एक अच्छा जीवन जी पाएंगे.
लिटिल हेल्थ एडवाइजरी विद दैट, एंड नाउ मूविंग ओवर टू हैदराबाद मेट्रो न्यूज. एज यू टॉकिंग अबाउट द स्कॉचिंग हीट इज ग्रिपिंग हैदराबाद, द टेम्परेचर इज रीचिंग न्यू हाइट्स दैट are reminiscent of the 2016 extreme heat. Yesterday, Hyderabad recorded an average maximum temperature of 40.2 degrees Celsius, marking a significant escalation in the summer heat. As per the IMD data, the year 2016 witnessed a similar onslaught of intense heat in March, making it the hottest in a decade. Areas like Kukattapalli sizzled at 42.3 degrees Celsius, while Marudupalli and Serilingampalli sweltered at 41.9 degrees Celsius each. Other areas including Borabanda at 41.8 degrees Celsius and Uppal at 41.7 degrees Celsius also grappled with soaring temperatures. The IMD's forecast paints a worrisome picture for Hyderabad residents as the intense heat is predicted to persist for the next 5 days.
और अब नजर आते हैं देश की सांस्कृतिक राजधानी कोलकाता की ओर. रेलवे सुरक्षा के मुख्य आयुक्त सीसीआरएस श्री जनक कुमार गर्ग ने कल ऑरेंज लाइन के नवनिर्मित बेले घाटा से हेमंत मुखोपाध्याय खंड का निरीक्षण किया. ऑरेंज लाइन के हेमंत मुखोपाध्याय से बेलाघाटा खंड की शुरुआत करने के लिए सीसीआरएस निरीक्षण अनुमोदन अनिवार्य है. वर्तमान में इस कॉरिडोर के कवि सुभाष से हेमनाथा मुखोपाध्याय खंड पर मेट्रो सेवाएं उपलब्ध हैं. श्री गर्ग ने प्रवेश और निकास द्वार, एएफसी, पीसी गेट, टिकट प्रणाली, एस्केलेटर, लिफ्ट, साइनेस बोर्ड, फायर सेफ्टी के साथ और अन्य यात्री सुविधाएं जिसमें स्टेशन नियंत्रण कक्ष, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली, सिग्नल उपकरण कक्ष, बुकिंग काउंटरों का निरीक्षण किया. इसके अलावा उनकी उपस्थिति में हेमंत मुखोपाध्याय से बेलाघाटा स्टेशन और वापसी तक इस खंड पर स्पीड ट्रायल भी किया गया. तो ये थे अब तक के मेट्रो समाचार. श्रोताओं, आकाशवाणी गोल्ड पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे सिद्धार्थ और वैभव के साथ, और कार्यक्रम आज सवेरे में अब बात मौसम की. तो सबसे पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मौसम का हाल. दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की बूंदाबांदी होने के आसार हैं. न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. तो वैभव, हम मौसम में बदलाव की बात कर रहे थे और आज दिल्ली में हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है. मुंबई की का रुख करें तो वहां दोपहर और शाम के समय आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं. न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. कोलकाता की बात करें तो वहां आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बिजली चमकने की भी संभावना है. न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. और वैभव, आप बताएं बाकी मेट्रोज में मौसम कैसा रहने वाला है.
यस सिद्धार्थ, मूविंग ओवर टू द अदर मेट्रोज, चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काइज, द मिनिमम टेम्परेचर इज 25 एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 35 डिग्रीज. बेंगलुरु इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू हैव मेनली क्लियर स्काइज, द मिनिमम टेम्परेचर इज 22 एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 36. हैदराबाद इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काइज विद हेज, the temperature will hover between a minimum of 25 and a maximum of 39 degrees Celsius.
और श्रोताओं, कार्यक्रम आज सवेरे में अब हम बात करेंगे आज के दिन की इतिहास की. 1842 में 30 मार्च के दिन ही बेहोशी की दवा के रूप में ईथर का पहली बार इस्तेमाल हुआ था.
In 1699, the great Guru Gobind Singh Ji, the 10th Guru of Sikhs, established the Khalsa Panth.
और 1919 में महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरोध की घोषणा की थी.
In 1822, the Florida Territory was created in the United States. In 1842, ether anesthesia was used for the first time in an operation by the American surgeon Dr. Crawford Long. In 1856, the Treaty of Paris is signed, ending the Crimean War. And in 1861, the discovery of chemical elements, William Crookes announced his discovery of thallium.
And 1949, आज ही के दिन राजस्थान का स्थापना दिवस है और 30 मार्च 1949 में जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों का विलय होकर 73 राजस्थान संघ बना था। यही दिन राजस्थान का स्थापना दिवस माना जाता है। और 30 मार्च की तारीख भारतीय सिनेमा के इतिहास में खास महत्व रखती है। 30 मार्च 1992 को भारतीय सिनेमा के युग पुरुष सत्यजीत रे को ऑस्कर लाइफ टाइम अचीवमेंट मानद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देश के सिनेमा के इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखने वाले सत्यजीत रे को 1992 में कला के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1984 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया और कुल 37 फिल्में बनाने वाले सत्यजीत रे की यादगार फिल्मों में पाथेर पंचाली, अपराजित तो अपूर संसार और चारुलता जैसी फिल्मों ने सभी के दिलों को जीता था।
In 1919, Gandhiji, the father of the nation, announced resistance against Rowlatt Act. In 1923, new financial measures came into force, including the restoration of the salt tax. And in 2017, which is quite recent, SpaceX conducted the world's first reflight of an orbital class rocket.
और कार्यक्रम आसवरे में वक्त हो चला है उन लोगों को याद करने का जो आज के दिन हमसे मिले या जुदा हुए। और आज ही के दिन उस दुनिया को अलविदा कहा आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध गद्यकार, उपन्यासकार, व्यंगकार, पत्रकार, दूरदर्शन धारावाहिक लेखक, फिल्म पटकथा लेखक मनोहर श्याम जोशी ने। दूरदर्शन के प्रसिद्ध और लोकप्रिय धारावाहिकों बुनियाद, नेताजी कहीं, मुगेरीलाल के हसीन सपने, हम लोग के कारण वो सबके दिलों की धड़कन बन गए।
कहीं तो है सपना और कहीं याद, कहीं तो हंसी रे कहीं फरियाद, पल छिन पल छिन तेरे मेरे जीवन की यही
जी हाँ। और पुरस्कारों की बात करें तो मनोहर श्याम जोशी को सन 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1993-94 में राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान से अलंकृत किया गया था।
Today, that is the 30th of March, is the birth anniversary of one of the greatest painters who ever lived. It's the birth anniversary of Vincent Willem van Gogh, a Dutch post-impressionist painter who's among the most famous and influential figures in the history of Western art. In just over a decade, he created approximately 2,100 artworks, including around 860 oil paintings, most of them in the last 2 years of his life. It is also the birth anniversary of Swiss diplomat Karl Lutz. He served as the Swiss Vice Consul in Budapest, Hungary, known for his humanitarian actions. From 1942 until the end of the World War II, he's credited with saving over 62,000 Jews during the Second World War in a very large rescue operation. Due to his actions, half of the Jewish population of Budapest survived and was not deported to the Nazi extermination camps during the Holocaust. He was awarded the title of the Righteous Among the Nations.
और आज ही जन्मदिन है सुप्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री देविका रानी का। देविका रानी ने एक दशक के अपने फिल्मी करियर में कुल 15 फिल्मों में ही काम किया, लेकिन उनकी हर फिल्म को क्लासिक का दर्जा हासिल है। विषय की गहराई और सामाजिक सरोकारों से जुड़ी उनकी फिल्मों ने अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय फिल्म जगत में नए मूल्य और मानदंड स्थापित किए। हिंदी फिल्मों की पहली स्वप्न सुंदरी और ड्रैगन लेडी जैसी टाइटल से सुशोभित देविका को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी लोकप्रियता और सराहना मिली। इंग्लैंड में कुछ वर्ष रहकर देविका रानी ने रॉयल अकादमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट में भने की विधिवत पढ़ाई की। इस बीच उनकी मुलाकात सुप्रसिद्ध निर्माता हिमांशु राय से हुई और दोनों दाम्पत्य सूत्र बंधन में बंध गए। मुंबई आने के बाद हिमांशु राय और देविका रानी ने मिलकर बॉम्बे टॉकीज बैनर की स्थापना की और फिल्म जवानी की हवा का निर्माण किया और फिल्म अछूत कन्या में अपने अभिनय से देविका ने दर्शकों को अपना दीवाना बना दिया। और इसके बाद 1933 में रिलीज हुई फिल्म कर्मा देविका रानी के करियर का अहम मोड़ साबित हुई। इस फिल्म ने अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता हासिल की और उन्हें प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचा दिया। देविका रानी को भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार सहित कई सम्मान मिले। इसके अलावा देविका रानी फिल्म इंडस्ट्री की प्रथम महिला बनी जिन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था।
Wishing a very, very happy birthday on his birthday today, Eric Clapton, one of the greatest rock and blues guitarists of all times, a singer and songwriter, ranked second in the Rolling Stones list of 100 greatest guitarists of all times and fourth in Gibson's top 50 guitarists of all times. He has been highly acclaimed throughout his career. Here's his track called Bell Bottom Blues. Also, it is the birthday of one of the greatest pop singers of all times. It is the birthday of Celine Dion, full name Celine Marie Claudette Dion, a Canadian singer referred to as the Queen of Power Ballets. Everyone knows the track, it needs no introduction. This is Titanic's My Heart Will Go On.
Every night in my dreams,
it is also the birthday of 9-time Grammy Award winner, the daughter of Pandit Ravi Shankar. This is Norah Jones. Having sold more than 50 million records worldwide, here's her track called Sunrise.
Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock tells 9:15 for hours. Sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming home.
और श्रोताओं, आज इस दुनिया को अलविदा कहा बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध गीतकार आनंद बख्शी ने, जिन्होंने बॉलीवुड के लिए एक से बढ़कर एक गीत लिखे जो आज भी हमारे दिलों में रचे बसे हैं। '72 में आई फिल्म मोम की गुड़िया में पहली बार आनंद बख्शी को गीत गाने का मौका मिला था। आनंद बख्शी ने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक गीत दिए, जिनमें फिल्म कटी पतंग, बॉबी, सत्यम शिवम सुंदरम, अमर अकबर एंथोनी, एक दूजे के लिए हीरो, कर्मा, राम लखन खलनायक, ताल, यादें जैसी फिल्में शामिल हैं। आनंद बख्शी 40 बार फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किए गए और जिसमें से 4 बार उन्हें ये पुरस्कार मिला। आदमी मुसाफिर है, तेरे मेरे बीच कैसा है बंधन, और तुझे देखा तो ये जाना सनम और दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे वो गीत थे जिनके लिए उन्हें ये पुरस्कार मिला। आनंद बख्शी आज हमारे बीच नहीं है लेकिन उनके लिखे गीत आज भी हमारे दिलों में रचे बसे हैं। और श्रोताओं घड़ी की सुइयां भी इशारा कर रही हैं कि अब आपसे विदा दी जाए। आपके एक बेहतर दिन की शुभकामनाओं के साथ अनुमति दीजिए सिद्धार्थ सिंह और वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की, लेकिन आप सुनते रहें आकाशवाणी कोट।
कमिंग अप नेक्स्ट इज द समाचार प्रभात, अ हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय द मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ लवली डे यू ऑल।
नमस्कार।